ये आकाशवाणी है, अब आप विनय सक्सेना से समाचार सुनिए। गृहमंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद के पिपलाज में कचरे से ऊर्जा उत्पादन के लिए गुजरात के सबसे बड़े संयंत्र का उद्घाटन किया। यह संयंत्र 375 करोड़ रुपए की लागत से सरकारी निजी भागीदारी पीपीपी मॉडल पर बनाया गया है। अहमदाबाद में कचरे से ऊर्जा उत्पादन का यह पहला संयंत्र होगा जो हरित भविष्य की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा। झारखंड में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए उम्मीदवारों के नाम वापस लेने की प्रक्रिया आज पूरी हो गई। इस चरण में 634 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए थे। दूसरे चरण में 20 नवंबर को 38 विधानसभा क्षेत्रों के लिए मतदान होगा, जबकि पहले चरण में 13 नवंबर को 43 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। मतों की गणना 23 नवंबर को होगी। उधर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में इस बार 22 लाख से अधिक मतदाता 18 से 19 आयु वर्ग के हैं। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को मतदान होना है। इस दिन कुल 9,70,25,119 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों की मतगणना 23 नवंबर को होगी। कर्नाटक और छत्तीसगढ़ सहित 8 राज्यों तथा 2 केंद्र शासित प्रदेशों का आज स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने लोगों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश की विकास यात्रा में इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लोगों द्वारा किए गए योगदान पर प्रकाश डाला। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कामना की कि ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेश देश की शांति और समृद्धि में योगदान करते हुए प्रगति करते रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में इन राज्यों के लोगों की प्रसन्नता और सफलता के लिए कामना की। कोयला मंत्रालय ने कहा है कि इस वर्ष अक्टूबर में कोयला उत्पादन 8,44,50,000 टन पर पहुंच गया, जो पिछले वर्ष अक्टूबर में 7,85,70,000 टन था। चालू वित्त वर्ष में अक्टूबर तक कोयला उत्पादन 53,74,50,000 टन हो गया है, जो पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि के 50,65,60,000 टन की तुलना में 6.1% अधिक है। मेट्रो शहरों में वाणिज्यिकी एलपीजी गैस सिलेंडर के मूल्य में 62 रुपए की वृद्धि हुई है। तेल विक्रेता कंपनियों ने बड़ी कीमतों की घोषणा की है, जो आज से लागू हो गई है। भारत और चीन के सैनिकों ने पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गश्त शुरू कर दी है। दोनों देशों के सैनिकों के बीच अप्रैल 2020 में हुई झड़प के बाद इस क्षेत्र में गश्त बंद हो गई थी और करीब 4.5 वर्ष के बाद दोबारा शुरू हुई है। देपसांग में भी सैनिकों की गश्त जल्द शुरू होगी। पिछले महीने राजनयिक और सैन्य स्तर की वार्ताओं के बाद दोनों देशों के बीच सैनिकों को पीछे हटाने पर सहमति बन गई थी। कल दीपावली के अवसर पर भारत और चीन के सैनिकों ने चुशूल मोल्दो, दौलतबेग ओल्डी, हॉट स्प्रिंग, के पास और कोंगला सहित अनेक स्थानों पर मिठाइयों का आदान प्रदान किया। श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त संतोष झा ने कहा है कि आयुर्वेद भारत और श्रीलंका के बीच एक सेतु की तरह है, जो दोनों देशों को साझा सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक उपचार पद्धतियों में एकजुट करता है। श्री झा ने आज कोलंबो विश्वविद्यालय के न्यू आर्ट्स थिएटर में 9वें आयुर्वेद दिवस समारोह में यह टिप्पणी की। यह कार्यक्रम स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र द्वारा कोलंबो विश्वविद्यालय के स्वदेशी चिकित्सा संकाय के साथ साझेदारी में आयोजित किया गया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने युवाओं का आह्वान किया है कि वे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2022-23 के लिए आवेदन करें। ये पुरस्कार 15 से 29 वर्ष की आयु के व्यक्तियों और संगठनों को विकास और समाज सेवा के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य और योगदान के लिए दिए जाते हैं। इन क्षेत्रों में स्वास्थ्य, मानवाधिकार प्रोत्साहन, सक्रिय नागरिकता और समुदाय सेवा शामिल है। इस पुरस्कार के रूप में पदक, प्रमाण पत्र और 1,00,000 रुपये नकद तथा संगठन के मामले में 3,00,000 रुपये नकद दिए जाते हैं। वीडियो संदेश में डॉ. मांडविया ने कहा कि ये पुरस्कार केवल अलंकरण मात्र नहीं है, बल्कि प्रगतिशील और समावेशी भारत को मजबूत करने में युवा नेतृत्व का सम्मान है। 2022-23 के राष्ट्रीय युवा पुरस्कारों के लिए आवेदन गृह मंत्रालय के पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से आमंत्रित किए गए हैं। आज से 15 नवंबर तक आवेदन किया जा सकता है। मुंबई में न्यूजीलैंड के साथ तीसरे अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में आज पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने पहली पारी में 4 विकेट के नुकसान पर 86 रन बना लिए थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।